एकत्र ज्ञान गोष्ठी। आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने ना दुनिया भर में आर्थिक सोच पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। ये किताब है थॉमस पिकेटी की, नाम है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। थोड़ी मोटी है, भारी भरकम है, लेकिन इसके जो विचार है वो आज बहुत ज्यादा प्रासंगिक है।
बिल्कुल, और इसकी प्रासंगिकता तो मतलब हम अपने आसपास ही देख रहे हैं। ये जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है, क्या ये बढ़ रही है? ऐसा महसूस होता है ना?
हाँ, लगता तो है।
और पिकेटी यही सवाल उठाते हैं कि भाई ये जो असमानता बढ़ रही है, क्या ये पूंजीवाद का मतलब सिस्टम का ही एक हिस्सा है या ये बस एक दौर है जिसे हम ठीक कर सकते हैं? ये किताब इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने की एक बहुत बहुत गहरी कोशिश है।
ये जो मुख्य विचार है, उनका जो विश्लेषण है, उसे आसान भाषा में समझें और देखें कि इसका हमारी जिंदगी पर, हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है। तो शुरू करें?
जरूर जरूर, लेकिन पहले थॉमस पिकेटी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। है कौन ये? ये एक फ्रेंच अर्थशास्त्री हैं, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं, और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 22 साल की उम्र में पीएचडी कर ली थी, वो भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से।
अरे वाह, 22 साल में! ये तो बहुत ही प्रभावशाली है। लेकिन कई अर्थशास्त्री डेटा देखते हैं, मॉडल बनाते हैं, पिकेटी में ऐसा क्या खास है? उनकी अप्रोच अलग कैसे है?
अच्छा सवाल है। देखिए, पिकेटी की खासियत सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि उनका नजरिया है जो ऐतिहासिक है। उन्होंने और उनके साथियों ने, जैसे इमैनुअल साइज, गैब्रियल जुकमैन, लगभग 15 साल लगाए हैं।
15 साल?
हाँ, और 20 से ज्यादा देशों के पिछले 300 सालों के आय और संपत्ति के रिकॉर्ड्स खंगाले हैं।
300 साल?
जी, पुराने टैक्स दस्तावेज, वसीयतें, नेशनल अकाउंट्स, सब कुछ। वो सिर्फ मैथ्स या मॉडल तक सीमित नहीं रहते, वो इकोनॉमिक्स को इतिहास से, समाजशास्त्र से, यहाँ तक कि जैसा आपने कहा, साहित्य से भी जोड़ते हैं।
साहित्य से? ये दिलचस्प है, कैसे?
हाँ, वो दिखाते हैं कि कैसे जेन ऑस्टिन या बाल्जाक के नॉवेल्स में उस जमाने की संपत्ति, विरासत, इनका समाज पर क्या असर था, ये सब साफ झलकता है। उनका जो यूरोपियन नजरिया है, खासकर फ्रेंच बैकग्राउंड से, वो उन्हें एंग्लो अमेरिकन सोच से थोड़ा अलग मुम देता है। और उनकी कोशिश रहती है कि ये जटिल बातें आम लोगों तक पहुंचे,
ताकि सब इस पर बात कर सके।
बिल्कुल, वो आंकड़ों के पीछे की कहानी बताना चाहते हैं।
तो ये जो मोटी सी किताब है, लगभग 700 पन्नों की, इसका निचोड़ क्या है, ये कहती क्या है आखिर?
देखिए, इसे सिर्फ एक इकोनॉमिक्स की किताब कहना ठीक नहीं होगा। ये एक तरह से आर्थिक इतिहास का महाग्रंथ है, आज की असमानता का एक जबरदस्त डेटा बेस्ड विश्लेषण है, और भविष्य के लिए पॉलिसी के सुझाव भी हैं इसमें।
अच्छा।
इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये समझना है कि पूंजीवादी सिस्टम में लंबे समय में, मतलब दशकों और सदियों में, धन और आय कैसे बंटते हैं, इसके पैटर्न क्या हैं।
तो सिर्फ आज की बात नहीं, सदियों का ट्रेंड देख रहे हैं वो।
बिल्कुल, पिकेटी हमें 18वीं सदी से लेकर आज और आने वाले कल तक की यात्रा पर ले जाते हैं। फोकस मुख्य रूप से फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों पर है, क्योंकि वहां का डेटा अच्छा और लंबा मिलता है। और वो दिखाते हैं कि कैसे ये जो संपत्ति का जमावड़ा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वो समाज को कैसे आकार देता है, रिश्तों को, मौकों को, सब कुछ। और इन सबके मूल में है उनका एक केंद्रीय आइडिया, एक फॉर्मूला, RG। इस पर अभी हम डिटेल में बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है।
हाँ, ये मैंने सुना है, RG। चलिए तो आप किताब के अंदर चलते हैं। पिकेटी ने इसे चार हिस्सों में बांटा है ना। पहला भाग है आय और पूंजी, यहाँ वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताते हैं।
हाँ, ये बिल्कुल फाउंडेशन है। वो समझाते हैं आय यानी इनकम क्या है, जो हम कमाते हैं, ये एक फ्लो है, जैसे सैलरी आती है, और पूंजी या धन यानी कैपिटल या वेल्थ क्या है, जो हमारे पास जमा है, जैसे घर, जमीन, शेयर्स, ये एक स्टॉक है, जमा हुआ पानी समझ लीजिए।
ठीक है, फ्लो और स्टॉक।
फिर वो बताते हैं कि देश की कुल आय यानी नेशनल इनकम दो जगह से आती है, एक तो मेहनत की कमाई, लेबर इनकम, वेतन वगैरह, और दूसरी पूंजी से होने वाली कमाई, कैपिटल इनकम, किराया, ब्याज, मुनाफा।
अच्छा, और इसी भाग में वो एक जरूरी रेशियो की बात करते हैं, पूंजी आय अनुपात, जिसे वो बेटा यानी बीटा कहते हैं। ये क्या चीज है?
बीटा बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये बताता है कि किसी देश की कुल जमा पूंजी, स्टॉक, उसकी एक साल की राष्ट्रीय आय, फ्लो का कितना गुना है, मान लीजिए देश की कुल संपत्ति 600 लाख करोड़ है और सालाना आय 100 लाख करोड़, तो बेटा हुआ 6 या 600%।
ओके, यानी संपत्ति आय से 6 गुना ज्यादा है।
हाँ, और पिकेटी दिखाते हैं कि इतिहास में ये बीटा कम ज्यादा होता रहा है, ये स्थिर नहीं है। ये एक अहम इंडिकेटर है कि अर्थव्यवस्था में पूंजी का वजन कितना है।
समझ गई। अब आते हैं दूसरे भाग पर, पूंजी आय अनुपात की गतिशीलता। आपने कहा था ये किताब का एनालिटिकल हार्ट है, यहाँ वो पूंजीवाद के मौलिक नियमों की बात करते हैं।
हाँ, यहाँ 2 अहम नियम है। पहला, α=R×β। ये एक तरह की अकाउंटिंग आइडेंटिटी है। ये कहता है कि राष्ट्रीय आय में पूंजी का हिस्सा अल्फा, पूंजी पर मिलने वाली औसत लाभ दर आर, रेट ऑफ रिटर्न, और पूंजी आय अनुपात बीटा का गुणा होता है। इससे पता चलता है कि आर और बीटा मिलकर कैसे तय करते हैं कि इकोनॉमी का कितना हिस्सा कैपिटल ओनर्स को जा रहा है और कितना मजदूरों को।
और दूसरा नियम,
β=SG, ये ज्यादा भविष्य बताने वाला लगता है।
बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है। ये कहता है कि लंबे समय में किसी देश का पूंजी आय अनुपात बीटा उसकी बचत दर एस, सेविंग्स रेट, और उसकी आर्थिक विकास दर जी, ग्रोथ रेट के अनुपात रेशियो पर निर्भर करता है। एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब समझिए, अगर अर्थव्यवस्था धीरे बढ़ रही है, जी कम है, जैसा कि पिकेटी कहते हैं कि 21वीं सदी में हो सकता है, तो एक सामान्य बचत दर एस से भी समय के साथ आय के मुकाबले बहुत ज्यादा पूंजी बीटा जमा हो जाएगी।
अच्छा,
इसे ऐसे सोचें, एक नदी इकोनॉमी धीमी बह रही है, जी कम है, आप उसमें लगातार पत्थर बचत एस डाल रहे हैं, तो पत्थरों का ढेर पूंजी बीटा नदी के पानी के मुकाबले बहुत ऊंचा होता जाएगा।
वाओ, ये तो बढ़िया उदाहरण है, एकदम साफ हो गया। धीमी ग्रोथ मतलब संपत्ति ज्यादा तेजी से जमा होती है आय के मुकाबले।
बिल्कुल सही। और जब बीटा बढ़ता है और अगर पूंजी पर रिटर्न ऊंचा बना रहता है, जो पिकेटी दिखाते हैं कि अक्सर होता है, तो पहले नियम के हिसाब से राष्ट्रीय आय में पूंजी का हिस्सा अल्फा भी बढ़ जाता है।
मतलब ज्यादा पैसा पूंजीपतियों के पास।
हाँ, और कम मेहनत करने वालों के पास। यहीं से असमानता की जड़ शुरू होती है।
तो अब आते हैं भाग 3, असमानता की संरचना पर। यहाँ पिकेटी इसी विश्लेषण को असली आंकड़ों पर लागू करते हैं और वो मशहूर यू शेप कर्व की बात यहीं आती है।
हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिकेटी दिखाते हैं कि आय असमानता का इतिहास एक यू जैसा रहा है। पहले विश्व युद्ध से पहले यूरोप में असमानता बहुत ज्यादा थी, यू का बाया हिस्सा ऊपर। फिर 1914 से 1970 के दशक तक 2 विश्व युद्ध हुए, महामंदी आई, सरकारों ने ऊंचे टैक्स लगाए, इन सब वजहों से पूंजी नष्ट हुई और असमानता काफी कम हो गई, यू का निचला हिस्सा।
अच्छा, तो वो दौर एक तरह का अपवाद था।
हाँ, पिकेटी यही कहते हैं। फिर 1980 के दशक से खासकर अमेरिका, ब्रिटेन में असमानता फिर से तेजी से बढ़ने लगी है, यू का दायां सिरा वापस ऊपर जा रहा है।
लेकिन ये वापस क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे पिकेटी क्या वजहें बताते हैं?
वो 2 मुख्य ताकतें बताते हैं। पहली और शायद सबसे अहम है पैतृक पूंजीवाद, पेट्रिमोनियल कैपिटलिज्म की वापसी।
पैतृक पूंजीवाद मतलब
एक ऐसा सिस्टम जहां आपकी आर्थिक सफलता आपकी मेहनत से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि आपको विरासत में क्या मिला।
अच्छा,
और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिकेटी का केंद्रीय तर्क है आर चांदी जी, पूंजी पर रिटर्न आर, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ जी से ज्यादा है, तो जिनके पास पहले से पूंजी है उनकी दौलत बाकी लोगों की कमाई से ज्यादा तेजी से बढ़ती है, इसलिए विरासत फिर से बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, जैसे पुराने जमाने में होता था।
और दूसरी ताकत क्या है?
दूसरी ताकत जो खासकर अमेरिका में ज्यादा दिखती है वो है सुपर मैनेजर्स का उदय।
सुपर मैनेजर्स?
हाँ, मतलब बड़ी कंपनियों के टॉप एग्जीक्यूटिव जिनकी सैलरी पिछले कुछ दशकों में आसमान छूने लगी है, करोड़ों में, अरबों में।
हाँ, ये तो सुनते हैं हम।
पिकेटी मानते हैं कि ये सिर्फ उनकी काबिलियत का नतीजा नहीं है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बदलाव, टैक्स रेट्स में कमी, सोशल नॉर्म्स के बदलने का भी नतीजा है। वो काफी हद तक अपना वेतन खुद ही तय कर लेते हैं।
अच्छा, तो ये आय के टॉप लेवल पर असमानता बढ़ा रहे हैं।
बिल्कुल, ये लेबर इनकम के टॉप पर इनइक्वालिटी है।
ये तो काफी चिंताजनक तस्वीर है। तो क्या पिकेटी कोई रास्ता भी सुझाते हैं, कोई समाधान? ये हमें किताब के भाग 4 पर ले आता है, 21वीं सदी में पूंजी का नियमन।
हाँ बिल्कुल, आखिरी हिस्से में वो समाधानों पर बात करते हैं। वो इन्फ्लेशन या प्रोटेक्शनिज्म जैसे उपायों को नाकाफी मानते हैं। उनका जो सबसे मशहूर और कह सकते हैं विवादास्पद सुझाव है वो है पूंजी पर एक प्रगतिशील वैश्विक वार्षिक कर।
प्रोग्रेसिव ग्लोबल टैक्स ऑन कैपिटल?
वैश्विक टैक्स, पूरी दुनिया में ये कैसे मुमकिन है?
हाँ, सुनने में ही बहुत मुश्किल लगता है, और पिकेटी खुद मानते हैं कि ये एक यूटोपियन आइडिया है, मतलब आदर्शवादी है। इसे लागू करने के लिए जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए, जो आज की दुनिया में आसान नहीं है।
सही बात है।
लेकिन उनका तर्क है कि अगर हमें धन के इस बेलगाम जमावड़े को रोकना है, अगर टैक्स चोरी रोकनी है, संपत्ति में पारदर्शिता लानी है और समाज के लिए संसाधन जुटाने हैं, तो लॉजिकली यही सबसे सही तरीका है। और इसके अलावा?
इसके अलावा वो प्रगतिशील आयकर, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, और विरासत कर, इनहेरिटेंस टैक्स को भी मजबूत करने की वकालत करते हैं।
तो इस पूरी चर्चा से, इस किताब से, वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें खास तौर पर ध्यान में रखनी चाहिए? सार क्या निकलता है?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात है, पूंजीवाद के अंदर ही एक टेंशन है, एक अंतर विरोध है, जिसे आरजी दिखाता है। जब कैपिटल पर रिटर्न आर, इकोनॉमिक ग्रोथ जी, से ज्यादा होता है, तो इनइक्वालिटी, असमानता नेचुरली बढ़ती है। ये सिस्टम का एक तरह का डिफॉल्ट मोड हो सकता है।
ये कोई साजिश नहीं, बल्कि सिस्टम की बनावट है।
हाँ, ऐसा पिकेटी का तर्क है। दूसरी बात जो मुझे बहुत अहम लगी, वो ये कि 20वीं सदी के मध्य का जो दौर था, जब असमानता कम हुई थी, वो शायद एक एक्सेप्शन था, नॉर्म नहीं।
हाँ, हम अक्सर सोचते थे कि विकास होगा तो असमानता कम हो जाएगी। कुज़्निट्स कर्व वाली बात।
बिल्कुल, पिकेटी कहते हैं वो शायद एक भ्रम था। वो कमी युद्धों, तबाही और खास सरकारी नीतियों का नतीजा थी।
अच्छा, तीसरा पॉइंट।
तीसरा कि हम एक तरह से पैतृक पूंजीवाद की तरफ लौट रहे हैं, मतलब वो दुनिया जहां आपके किस्मत आपकी मेहनत से ज्यादा आपके जन्म पर निर्भर करती है, विरासत ज्यादा जरूरी होती जा रही है।
ये तो योग्यता वाले विचार को चुनौती देता है।
हाँ, और चौथा पॉइंट इसी से जुड़ा है, योग्यता तंत्र यानी मेरिटोक्रेसी की अपनी सीमाएं हैं। बेशक पढ़ना लिखना, हुनर हासिल करना जरूरी है, लेकिन पिकेटी दिखाते हैं कि जब दौलत बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस पर मिलने वाला रिटर्न आर इतना ताकतवर हो जाता है कि वो मेहनत की कमाई पर हावी हो जाता है। सिर्फ शिक्षा से ये समस्या हल नहीं होती। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी राजनीतिक संदेश, असमानता कोई किस्मत का खेल नहीं है, इससे निपटा जा सकता है, लेकिन इसके लिए संस्थागत बदलाव और राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। पिकेटी चेतावनी देते हैं कि बहुत ज्यादा असमानता लोकतंत्र के लिए खतरा है, बाजार अपने आप ये ठीक नहीं करेगा, हमें नीतियां बनानी होंगी, खासकर टैक्स नीतियां।
इस किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो दिमाग में रह जाते हैं, जैसे वो आरजी वाली बातें।
हाँ, उनका वो केंद्रीय तर्क, जब पूंजी पर लाभ की दर आर, उत्पादन और आय की वृद्धि दर जी से ज्यादा हो जाती है, तो पूंजीवाद अपने आप ऐसी मनमानी और अस्थिर असमानताएं पैदा करता है जो लोकतांत्रिक समाजों के योग्यता आधारित मूल्यों की जड़ें खोद देती हैं। ये सीधे आरजी के सामाजिक असर की बात है।
और एक और बात जो आपने कही थी विरासत के बारे में, अतीत भविष्य को निगल जाता है, ये बहुत पावरफुल लाइन है।
हाँ बिल्कुल, ये दिखाती है कि कैसे पुरानी दौलत नए मौकों को खत्म कर सकती है।
टैक्स के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था, है ना?
हाँ, वो कहते हैं जिसका भाव है, करों के बिना समाज का कोई साझा भाग्य नहीं होता। टैक्स सिर्फ पैसा नहीं है, ये हमारी साझा प्राथमिकताओं को दिखाता है, हम मिलकर क्या करना चाहते हैं।
और एक चेतावनी भी है।
हाँ, कि बाजार पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। वो कहते हैं कोई भी प्राकृतिक स्वतस्फूर्त प्रक्रिया ऐसी नहीं है जो अस्थिर करने वाली असमानतावादी ताकतों को स्थायी रूप से हावी होने से रोक सके, मतलब एक्शन लेना पड़ेगा।
तो ये सब बड़े विचार हैं, लेकिन इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या कनेक्शन है, हम इन्हें कैसे सोचें?
देखिए, एक तो ये पर्सनल फाइनेंस के बारे में सोचने का नजरिया देता है। ये बताता है कि सिर्फ अच्छी सैलरी काफी नहीं, बल्कि कैपिटल मतलब एसेट्स बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आरजी के कारण पूंजी ज्यादा तेजी से बढ़ती है, बचत, निवेश, इनका महत्व और बढ़ जाता है।
अच्छा, और करियर या पढ़ाई के बारे में?
हाँ, शिक्षा और स्किल तो जरूरी है ही, लेकिन ये समझने में मदद मिलती है कि सिर्फ अच्छी नौकरी से वो बड़ी खाई पाटना क्यों मुश्किल है। शायद ये उन कामों के बारे में सोचने को प्रेरित करता है जहां सैलरी के साथ वेल्थ क्रिएशन, संपत्ति बनाने के मौके भी हों।
राजनीतिक तौर पर देखें तो?
राजनीतिक तौर पर ये हमें टैक्स पर होने वाली बहसों को बेहतर समझने में मदद करता है। वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, जब ये बातें होती हैं तो हम पिकेटी के लेंस से देख सकते हैं कि ये प्रस्ताव कितने गंभीर हैं। क्या ये वाकई जी के असर को कम करने की कोशिश है?
और ये मेरिट वाली बात पर भी सवाल उठाने को कहता है।
हाँ बिल्कुल, हम अक्सर मान लेते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा है। पिकेटी दिखाते हैं कि पूरी कहानी ये नहीं है, खासकर जब बहुत ज्यादा अमीरी की बात हो। विरासत, पूंजी का रिटर्न, ये भी बड़े फैक्टर हैं। इससे समझ आता है कि क्यों कई मेहनती लोगों के लिए भी आगे बढ़ना मुश्किल होता है, और इसीलिए शायद अच्छी सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजें इतनी जरूरी हैं ताकि सबको बराबर मौका मिले।
मेरे लिए तो इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ी सीख ये है कि ये जो भयानक असमानता है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये काफी हद तक हमारी पसंद, हमारी नीतियों का नतीजा है। और 20वीं सदी के मध्य का दौर ये दिखाता है कि अगर समाज चाहे, सरकारें चाहें, तो बदलाव लाया जा सकता है, एक उम्मीद है।
और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग रही वो है RG जैसे एक सरल से दिखने वाले फॉर्मूले की ताकत, ये कैसे पूंजीवाद की वर्किंग में इतना गहरा बैठा है। ये कोई आज की समस्या नहीं, बल्कि एक स्थायी चुनौती लगती है जिससे हर पीढ़ी को शायद जूझना होगा। ये किताब इकोनॉमिक्स को सिर्फ नंबरों से निकालकर इतिहास, समाज और राजनीति के बड़े फलक पर रखती है। ये बहुत जरूरी काम है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।